بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ کہا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو اششٹ کرم ہے، تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجیانی لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ کہا، ہے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूं जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज गुरुवार है, खुरदाद की 12, ज़िलक़ादा की 2 और जून की भी 2 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आज की बात, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा महान महिलाएं। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप हमारी इस सभा से सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, सुनिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने इलाके में इसराइल की गतिविधियों की ओर से चेतावनी दी है। कोरोना वायरस की महामारी इस समय नियंत्रित हो चुकी है, और खुशी की खबर रही कि पिछले 24 घंटों में ईरान में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। भारत नियंत्रित कश्मीर में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। पूर्वी यूक्रेन के दोनबास इलाके में रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, और कहा जाता है कि पूरे लुगांस्क प्रांत पर रूस का कब्जा बहुत करीब है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने इलाके में इसराइल की गतिविधियों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि गैर कानूनी शासन इसराइल इलाके की जनता का कभी दोस्त नहीं हो सकता, इसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। सैयद इब्राहिम रईसी ने आर्मीनिया के राष्ट्रपति वाहान खाचादुरियान से टेलीफोनी वार्ता में कहा कि तेहरान और येरिवान के बीच जारी बातचीत पारस्परिक रणनीतिक साझेदारी की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम सारे देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान किए जाने पर जोर देते हैं। राष्ट्रपति रईसी ने दोनों देशों के बीच सहयोग के विस्तार की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे पूरे इलाके के विकास में मदद मिलेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने इस टेलीफोनी बातचीत में आर्मेनिया और आजरबाईजान गणराज्य के बीच शांति वार्ता की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जाना जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीब जादे ने अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों को संबोधित करते हुए कहा कि आप डिप्लोमेसी का चयन कर सकते हैं या उसके खिलाफ अमल करें, हम दोनों के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार की रात को ट्वीट करके अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए लिखा कि ज़ायोनी शासन परमाणु समझौते का नंबर 1 दुश्मन, एनपीटी को नकारने वाला और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में परमाणु हथियारों से संपन्न एकमात्र शासन है, और हम इस चीज को जानते हैं, दुनिया भी जानती है। सईद खतीबजादे ने आगे लिखा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका और यूरोप को जानबूझकर
सोई नींद से बाहर, क्षमा कीजिएगा, जानबूझकर गहरी नींद से बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे डिप्लोमेसी का विकल्प अपना सकते हैं या उसके खिलाफ अमल करें, हम दोनों के लिए तैयार हैं। कोरोना वायरस की महामारी इस समय नियंत्रित हो चुकी है और खुशी की खबर यह रही कि पिछले 24 घंटे में ईरान में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए, जिनमें 34 को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, शेष को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। ईरान में कोरोना से अब तक 141,318 मौतें हो चुकी हैं। ईरान में अब तक 6,45,50,043 लोग वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं, जबकि 5,78,66,000 से अधिक लोग दूसरा डोज ले चुके हैं। 2,75,62,000 से अधिक लोग तीसरा डोज भी प्राप्त कर चुके हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के साथ वार्ता फारस खाड़ी के देशों के दृष्टिकोण के आधार पर होनी चाहिए। समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि उनके देश का हाथ ईरान की ओर बढ़ा हुआ है और ईरान के साथ वार्ता फारस खाड़ी के देशों के दृष्टिकोण के आधार पर होनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हम ईरान से वार्ता के जरिए इस देश को शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इसी प्रकार अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों के प्रति कटिबद्ध रहने की दावत देना चाहते हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह बयान तब दिया है जब सऊदी अरब की भूमिका क्षेत्र के देशों में तनाव पैदा करने वाली मानी जाती रही है। इसराइली सेना ने गुरुवार को भी वेस्ट बैंक के बैतलहम नगर में हमला करके एक फिलिस्तीनी युवा को कत्ल कर दिया। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में इसराइल के हाथों मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 3 हो गई है। एमन महमूद नाम के 21 वर्षीय फिलिस्तीनी युवा को शरणार्थी शिविर के भीतर एक झड़प के दौरान इसराइली सैनिकों ने गोली मारी। ज़हनी सैनिकों ने गुरुवार की सुबह फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से इस इलाके पर छापा मारा, जिसके दौरान फिलिस्तीनी युवाओं से उनकी झड़पें शुरू हो गईं। मगर इस बीच इसराइली सेना के स्नाइपरों ने आसपास की इमारतों की छतों पर पोजीशनें संभाल ली और फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की, जिसमें एक फिलिस्तीनी युवा शहीद हो गया और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की स्थिति गंभीर है। इसराइली सैनिकों ने इस कार्यवाही के दौरान एक फिलिस्तीनी शहीद का मकान भी ध्वस्त किया। इसराइली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेत ने एक ट्वीट में कहा कि फिलिस्तीनी शहीदों के घर गिराने से पता चलता है कि ये उन्हीं के शब्दों में आतंकवाद को रोकने की प्रभावी कार्यवाही है। बुधवार की शाम भी एक फिलिस्तीनी युवा जेनिन के करीब याबत शहर में शहीद हो गया, जबकि 6 लोग घायल हो गए। इससे कुछ घंटे पहले फिलिस्तीनी पत्रकार गुफरान वरासना को इसराइली सैनिकों ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। भारत नियंत्रित कश्मीर में फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई। गुरुवार को हिंदू कर्मचारी पर घात लगाकर अलगावादियों ने हमला किया, जिसके नतीजे में विजय कुमार नाम का बैंक कर्मचारी घायल हो गया और बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। विजय कुमार राजस्थान में हनुमानगढ़ का रहने वाला था। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने कहा था कि कुलगाम जिले के अरेह मोहनपोरा स्थित इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए। हाल के दिनों में कश्मीर में हिंदू सरकारी कर्मचारियों पर हमले बढ़े हैं। कुछ लोगों का दावा है कि सरकारी संस्थानों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारी वो हैं जिनका संबंध आरएसएस से है और इस कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ कश्मीर में भारी आक्रोश पाया जाता है। वैसे विजय कुमार के बारे में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि वे आरएसएस की शाखा में जाते थे या नहीं। कुछ महीने पहले ये मांग उठी थी कि उन सरकारी कर्मचारियों की सूचना आम होनी चाहिए जो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। प्रशासन ने इसका विरोध किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर दुख जताया और इसकी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया कि विजय कुमार की टारगेट किलिंग के बारे में जानकर दुखी हूं, इस हत्या की निंदा करता हूं, परिवारों को इस तरह तबाह होते देख दिल दुखाने वाला है। 31 मई को कुलगाम में ही रजनी देवी नाम की एक हिंदू महिला शिक्षिका को अलगावादियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। 36 वर्षीय राहुल भट्ट बीते 10 वर्षों से तहसीलदार कार्यालय में काम कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास विशेष पैकेज के तहत उनको ये नौकरी मिली थी। चदुरा तहसील कार्यालय में तैनात राहुल भट्ट को 12 मई को अलगावादियों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंची है, जहां तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हो रही है और अफगान जनता के लिए दिल्ली सरकार की ओर से दी गई मानवीय सहायता के वितरण की निगरानी कर रही है। افغانستان سے امریکی سینکوں کے باہر نکلنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جب بھارت سرکار کی کوئی ٹیم اس سطح پر افغانستان کے ادھیکاریوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ ودیش منترالے نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی ادھیکاریوں کی ٹیم ان علاقوں کے دورے کرے گی جہاں بھارت سرکار مانویت سہایتائیں پہنچانا چاہتی ہے اور جہاں خاص پریوجناؤں پر کام آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بھارتی ودیش منترالے کے انوسار بھارت سرکار نے لگ بھگ 20,000 ٹن گیہوں اور 13 ٹن دوائیں اور COVID-19 کے ویکسین کے 5,00,000 ڈوز افغانستان بھیجی ہیں۔ افغانستان کی سطح میں طالبان کی واپسی کے بعد بھارت سرکار نے اپنا دوتاواس اور کوٹنیتک سنستان بند کر دیے تھے، مگر اب اس کی کوشش ہے کہ افغانستان سے کوٹنیتک رشتے بحال ہو جائیں۔ دلی کے مکھیمنتری کیجریوال نے کہا کہ کیندر سرکار اپ مکھیمنتری منیش سسودیا کو گرفتار کر سکتی ہے۔ دلی کے سی ایم اروند کیجریوال نے کیندر سرکار پر بڑا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ دلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سسودیا کو گرفتار کر سکتی ہے۔ انہوں نے گروار کو کہا کہ واسطو میں کیندر سرکار دلی سرکار کے اچھے کاموں سے گھبرا گئی ہے۔ آپ پارٹی کے سنیوجک اور دلی کے مکھیمنتری اروند کیجریوال نے کہا کہ منیش سسودیا کے خلاف بھی ستیندر جین جیسا فرضی کیس بنایا جا سکتا ہے۔ کیجریوال نے اپنے وکتبیہ میں کہا کہ دلی کے ڈپٹی سی ایم اور شکشا منتری سسودیا آزاد بھارت کے سب سے اچھے شکشا منتری ہیں۔ دلی میں 18,00,000 بچے یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یمن میں یدھ ویرام شانتی کا مہتوپورن اوسر ہے اور صنعاء قاہرہ کے بیچ اڑانوں کا جاری رہنا سواگت یوگیہ ہے۔ یمن کے لیے امریکی راجدوت اسٹیفن ہیرس واگن نے کہا کہ سنیوکت راشٹر سنگھ کی نگرانی میں جاری سنگھرش ویرام یمنیوں کی کامیابی اور شانتی کا اچھا اوسر ہے۔ یاد رہے کہ 7 سال سے ادھک سمے سے جاری یدھ اس سمے 3 مہینے کے لیے رکا ہوا ہے، مگر بیچ بیچ میں خبریں آتی ہیں کہ سعودی گٹھ بندھن سنگھرش ویرام کا الگھن کرتا ہے۔ عدن میں ایک کاریکرم میں بولتے ہوئے یمن کے لیے امریکہ کے راجدوت نے کہا کہ ورتمان اوسر کو ویاپک شانتی کے لیے مضبوط سہارے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اسی کاریکرم میں یمن کے لیے امریکہ کے وشیش دوت ٹیموتھی لنڈر کنگ کا کہنا تھا کہ یمنیوں کے پاس جنگ اور ودھونس کی جگہ شانتی بحال کرنے کا موقع ہے۔ انصار اللہ آندولن نے کہا ہے کہ سنگھرش ورام کا سمے بڑھانے کی شرط یہ ہے کہ ساری پرتبدھتاؤں کا پالن کیا جائے۔ انصار اللہ کی اچ راجنیتک سمیتی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم شانتی کے پکشدھر ہیں لیکن یمنیوں کے ادھیکاروں کو ہر حال میں حاصل کر کے رہیں گے۔ پوروی یوکرین کے دونباس علاقے میں روسی سینائیں لگاتار آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پورے لوگانس پرانت پر روس کا قبضہ بہت قریب ہے۔ یوکرین کے سینک ادھیکاریوں نے میڈیا کو بتایا کہ سیبیر اور دونیسک میں روسی سیناؤں کے ساتھ ہماری لڑائی آمنے سامنے کی ہو رہی ہے۔ روسی سینا اس شہر پر قبضے کے لیے بھرپور طاقت استعمال کر رہی ہے۔ یوکرین کی سینا نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تو روسی سینا نے رصد پہنچانے والی لائن کو بری طرح نشانہ بنایا۔ یوکرین کی سینا کا کہنا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹے میں روس کے کم سے کم 8 بڑے حملوں کا سامنا کیا ہے جو لوگانسک اور دونیسک میں الگ الگ ستھانوں پر ہوئے۔ لوگانسک کے ستھانی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ روسی سینا اس پورے علاقے کے 70% سے ادھک بھاگ پر قبضہ کر چکی ہے۔ حالات بہت گمبھیر ہیں اور یوکرین کی سینا کو روس کے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے بھاری ماترا میں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ حالات اتنے جٹل ہو گئے ہیں کہ اب اس شہر سے ناگرکوں کو باہر نکال پانا بھی اسمبھو ہو گیا ہے کیونکہ گولیوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹریہ سماچار سماپت ہوئے۔
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर میں سید میسم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں۔ ایران نے ایک بار پھر اپنے پرمانو کاریہ کرم کے شانتی پورن ہونے پر بل دیا ہے۔ جائزہ لے رہے ہیں कायम रिजवी।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर प्रकार की गैर रचनात्मक कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा। सईद खतीब जादे ने बुधवार को इस बात को स्पष्ट किया कि हर प्रकार की गैर रचनात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तथा IAEA के महानिदेशक की रिपोर्ट को ईरान के विरुद्ध दबाव के हथकंडे के रूप में देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक और इस दौरान ज़ायोनी शासन के विवादास्पद दावों के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के संबंध में आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक मसौदा पेश किया है। राफ़ाइल ग्रोसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान में संवर्धित यूरेनियम के भंडार 18 गुने हो गए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान इस देश में पिछले 3 वर्षों के दौरान परमाणु पदार्थों के मिलने के बारे में सही तकनीकी जवाब देने में नाकाम रहा है। IAEA की रिपोर्ट में ईरान के तर्कों को अनदेखा करते हुए उनको सही नहीं बताया गया, साथ ही पूर्व निर्धारित अटकलों को आधार बनाकर ज़ायोनी शासन के दावों को विश्वसनीय मानते हुए एक तरफा फैसला किया गया है। विशेष बात यह है कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बारे में अवैध ज़ायोनी शासन के सारे दावे अविश्वसनीय हैं। इस रिपोर्ट में ईरान पर एक आरोप ये भी लगाया गया है कि वो IAEA के निरीक्षकों को कुछ साइट्स पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। हालांकि एजेंसी को ये ज्ञात है कि समझौते के आधार पर ईरान गैर परमाणु केंद्रों को एजेंसी को दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। सीधी सी बात है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में IAEA के महानिदेशक के व्यवहार को गैर सार्थक मानता है, जो दोनों पक्षों के बीच संबंधों और सहकारिता को प्रभावित कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार की एक पक्षी रिपोर्ट का पेश किया जाना ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए शत्रु को एक नया बहाना दे सकता है। जैसा कि आरंभ में बताया गया है कि अमेरिका और उसके 3 सहयोगी यूरोपीय देशों ने ईरान के विरुद्ध एक मसौदा तैयार किया है। हालांकि इस प्रकार का ये काम पहले भी ईरान के विरुद्ध अंजाम दिया जा चुका है और उनके प्रयास ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के मार्ग में बाधा नहीं बन पाए और आगे भी नहीं बन पाएंगे। इसी संबंध में अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों को संबोधित करते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि आप कूटनीति या गैर कूटनीति कोई भी मार्ग अपनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हम दोनों के लिए तैयार हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अशांति को लेकर चेतावनी जारी की है। जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जारी अशांति के संबंध में चेतावनी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समाचार एजेंसी अनातोली से वार्ता में कहा है कि अफगानिस्तान में जो अशांति जारी है वो क्षेत्र और क्षेत्र से बढ़कर दूसरे क्षेत्रों में फैल सकती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से शरणार्थियों और आतंकवादियों का निकलना किसी भी देश के हित में नहीं होगा। پچھلے سال گرمی کے موسم میں طالبان نے افغانستان کی سطح کی باگڈور سنبھالی تھی اور اپیکچھا یہ کی جا رہی تھی کہ امریکی سینکوں کے اپستھتی کی تلنا میں افغانستان میں شانتی و سرکشا استھاپت ہو جائے گی، پرنتو اتی گرہنکاری سینکوں کے چلے جانے کے بعد بھی اس دیش میں پوری طرح شانتی و سرکشا استھاپت نہیں ہو پائی اور طالبان کو سطح کی باگڈور سنبھالے ہوئے لگ بھگ 10 مہینوں کا سمے بیت رہا ہے اور افغانستان میں اسرکشا و اشانتی کے علاوہ اب بھوکمری کا سنکٹ بھی اتپن ہو گیا ہے جو دن پرتی دن وشم روپ دھارن کرتا جا رہا ہے۔ اس دیش کی آرتھک استھتی بہت خراب ہو گئی ہے۔ افغانستان کے کروڑوں ڈالر کو امریکہ نے اپنے ہی دیش میں روک لیا اور کہہ دیا ہے کہ اس دھن کو دو حصوں میں بانٹا جائے گا، ایک حصہ 11 ستمبر کی گھٹنا سے پیڑت پرینوں کو دیا جائے گا جبکہ دوسرا امریکہ جانے والے افغان شرارتھیوں کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11 ستمبر کے حملے میں افغان جنتا و لوگوں کی کیا بھومکا تھی جو افغانستان کے راشٹریہ پیسے کو روک کر 11 ستمبر کی گھٹنا سے پربھاوت امریکی پریجنوں کو دیا جائے گا۔ اگر امریکی سرکار واسطو میں 11 ستمبر کی گھٹنا میں پربھاوت امریکی پریجنوں سے سہانبھوتی و درد رکھتی ہے تو وائٹ ہاؤس کو اس دیش کو نشانہ بنانا چاہیے جہاں کے ناگرک 11 ستمبر کی گھٹنا میں سب سے ادھک شامل تھے۔ یہ کون سی سہانبھوتی ہے کہ کسی دیش کا پیسہ ہڑپ کر دوسرے لوگوں کو دیا جائے؟ اس لیے بہت سے افغانوں اور غیر افغانوں نے امریکہ کے اس فیصلے کو ڈکیتی کا نام دیا ہے۔ امریکی سرکار اگر واسطو میں 11 ستمبر کی گھٹنا سے پیڑت پریواروں کی سہایتا کرنا چاہتی ہے تو اسے یوکرین کو اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی مدد کرنے کے بجائے اپنے دیش کی پیڑت جنتا کی سہایتا کرنی چاہیے۔ جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ افغانستان کی جو دور دشا ہوئی ہے اس کا اصلی ذمہ دار امریکہ ہے اور افغانستان کی بہت سی سمسیائیں اس کے کریا کلاپوں کا پریڑام ہیں۔ امریکہ نے طالبان سے وارتا کر کے اپنے اور نیٹو سینکوں کو افغانستان سے نکال لیا اور افغانستان کو برباد کر کے چھوڑ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے آتنکواد کو سماپت کرنے اور شانتی و سرکشا استھاپت کرنے کے بہانے افغانستان پر حملہ کیا تھا، پر آج تک وہاں شانتی و سرکشا کیوں استھاپت نہیں ہو سکی جبکہ امریکہ اور نیٹو کے سینک لگ بھگ 20 ورشوں تک افغانستان میں موجود تھے؟ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ امریکہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں شانتی و سرکشا استھاپت ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ واستوکتا یہ ہے کہ امریکی سینکوں کی تعیناتی سے پہلے وہاں جو شانتی و سرکشا ہوتی ہے وہ بھی اشانت میں پرورتت ہو جاتی ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ کیجریوال نے مودی سرکار سے کہا ہے کہ وہ ان کے سبھی منتریوں کو ایک ساتھ گرفتار کر لے۔ بیورا دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
دلی کے مکھیہ منتری ایوم عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجریوال نے آج دعویٰ کیا کہ دلی کے سواستھ منتری ستیندر جین کے بعد اب دلی کے اپ مکھیہ منتری ایوم شکشا منتری منیش سسودیا کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر آنے والے دنوں میں گرفتار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانکاری انہیں وشوسنیہ سوتروں سے ملی ہے۔ دلی میں آج ایک سنوادتا سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے مکھیہ منتری اروند کیجریوال نے پردھان منتری نریندر مودی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی کہ وہ عام آدمی پارٹی کے سبھی منتریوں اور ودھائکوں کو ایک ساتھ گرفتار کر کے ان کے ورودھ جانچ کرائیں، کیونکہ ایک ایک ویکتی کو گرفتار کرنے سے دلی کی جنتا کے لیے کیا جا رہا وکاس کا کام پربھاوت ہوگا۔
میری پردھان منتری جی سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے، یہ ایک ایک کر کے جیل میں ڈالنے کی بجائے آپ عام آدمی پارٹی کے ہم سبھی منتریوں اور سبھی ایم ایل ایز کو ایک ساتھ جیل میں ڈال دیجئے۔
کیجریوال نے وشواس جتایا کہ عام آدمی پارٹی کے سبھی نیتا بے داغ پائے جائیں گے۔ گیات رہے کہ دلی کے سواستھ ایوم اورجا منتری ستیندر جین کو منی لانڈرنگ کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں 9 جون تک پرورتن ندیشالے کی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ مہینے پہلے کہا تھا کہ کیندر سرکار جھوٹے معاملے میں ستیندر جین کو گرفتار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جن وشوسنیہ سوتروں نے ہمیں اس کی جانکاری دی تھی انہی سوتروں نے مجھ سے کل کہا کہ سسودیا کو بھی کچھ دنوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دلی کے مکھیہ منتری نے سسودیا کو دیش کی شکشا کرانتی کا پتا بتایا اور کہا کہ انہوں نے کیول دلی ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے چھاتروں میں آشا کی کرن جگائی ہے۔ انہوں نے سسودیا کو آزاد بھارت کا سب سے اچھا شکشا منتری بتایا۔ उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सत्येंद्र जैन के कामों की भी प्रशंसा की और कहा कि यदि दो मंत्री भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ज्ञात रहे कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को भी समन भेजा है, जिस पर कांग्रेस की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आज की बात, और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम सफल महिलाएं।
आज की बात।
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम हैदराबाद इनकाउंटर के कुछ आयामों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ऐसे लोगों की संख्या हजारों लाखों में निकल आएगी जिन्होंने हैदराबाद पुलिस के इनकाउंटर के मामले पर जश्न मनाया था और उसे सही ठहराया था। उन सभी को पता था और पता है कि पुलिस के इनकाउंटर कई बार गलत निकल चुके हैं और गलत होते भी हैं, तब भी लोगों ने हैदराबाद पुलिस पर फूल बरसाए थे। छह दिसंबर 2019 को हैदराबाद पुलिस ने चार आरोपियों को उसी जगह पर इनकाउंटर कर दिया था जहां दिशा की हत्या की गई थी, जिनके शरीर को बलात्कार के बाद जला दिया गया था। लोग पुलिस पर गुलाब के फूल बरसाने लगे और पुलिस वाले झूठी कहानी बनाने लगे कि कैसे ये आरोपी भाग रहे थे, पुलिस से हथियार छीन लिया था और पुलिस पर गोली चला रहे थे। लोग पुलिस की हर बात पर यकीन कर रहे थे और पुलिस की तारीफों के पुल बांध रहे थे। केवल फूल बरसाने वालों ने ही पुलिस पर भरोसा नहीं किया, बल्कि देश के लाखों लोगों ने हैदराबाद पुलिस की बातों पर यकीन किया। हर तरफ पुलिस की जय जयकार हो रही थी। हैदराबाद की महिलाओं ने पुलिस को राखी भी बांधी। छह दिसंबर 2019 के दिन किया गया ये इनकाउंटर फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 387 पन्नों के ऑर्डर में बताया कि ये इनकाउंटर फर्जी था। आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज कर रहे थे। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस की बताई हुई कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और न ही कोई सबूत है। ये कहानी झूठी है कि चारों आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए, पुलिस पर हमला किया और अपने बचाव में पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। भारतीय मीडिया पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार को हीरो के तौर पर पेश किया जाने लगा। सज्जनार के बारे में कहा जाने लगा कि जानिए कौन है सज्जनार। ये भी बताया जाने लगा कि 2008 में भी इस तरह का एनकाउंटर वो कर चुके हैं। سپریم کورٹ نے اس انکاؤنٹر کو فرضی پایا اور 10 پولیس والوں کے خلاف جھوٹی سوچنائیں دینے اور ثبوتوں کو مٹانے کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کرنے کے آدیش دیے۔ بھارتی میڈیا پر وی سی سجنار راتوں رات ہیرو بنا دیے گئے۔ سجنار نے ہندی میں بھی پریس کانفرنس کی۔ اس سمے بھی وہ شک کے دائرے میں تھے، لیکن کچھ لوگوں کو لگا کہ کمشنر سچ بول رہے ہیں۔
وکٹم کا سیل فون، ڈاٹا بینک اور ان کا واچ کو ریکور کرنے کا ضرورت تھا۔ ان کے لیے یہ لوگ بتائے کہ ہم لوگ جو آفینس ہوا برن کیا، اسی کے پلیس میں ہم لوگ رکھے ہیں۔ اس کو ہم لوگ وہاں پہ ہائی کر کے دکھانے کے لیے پارٹی کو یہاں پہ لے کے آیا۔ ہمارا پولیس پارٹی آج صبح یہاں پہ 5:45 کو آ گئے۔ سو آنے کے بعد یہ لوگ چاروں اکٹھا ہوا۔ اکٹھا ہونے کے بعد سٹون سے، لکڑی سے اور شارپ آبجیکٹ سے ان کو ہم کو اٹیک کرنے اسٹارٹ کیا، اور ہمارا جو دو پولیس آفیسر سے بھی ویپنس کھینچ گیا۔ سو ہمارا آفیسر بہت ریسٹرینٹ کرتے ہوئے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے بتایا، بٹ وہ لوگ سرنڈر نہیں کیا، ہمارے اوپر فائرنگ بھی کیا، اٹیک بھی کرے۔ سو بعد میں ہمارے لوگ بھی وہ فائرنگ کرنا پڑا۔ ان ریٹیلیشن کے بعد ہم بعد میں چیک کرے تو فائرنگ اسٹاپ ہونے کے بعد چیک کرے تو چار لوگ بلٹ انجریز کے ساتھ مر گئے تھے۔ یہ لوگ، دو لوگوں کے پاس ہمارا ویپنس بھی دکھے، A1 محمد کے پاس اور A4 چنتکنٹا چن کشن کے پاس ہمارا دو ویپنس ملے۔ اور اس معاملے میں ہمارا دو آفیسرس بھی، ایک ایس آئی اور ایک کانسٹیبل بھی، ایس آئی وینکٹیشور نندیگاما پولیس اسٹیشن کا اور ایک کانسٹیبل اروند گوڈ بھی انجرڈ ہوا۔ ان لوگ دونوں کو ہم لوگ لوکل ہاسپٹل کو چیک اپ کے لیے بھیجے، بعد میں ان کا ریفرنس کے بعد ہم لوگ کیئر ہاسپٹل کو ایڈمٹ کیے گئے۔ اس معاملے میں ہم لوگ بعد میں اس 4-5 دن بھی ہم لوگ بہت انویسٹیگیشن کیا، سائنٹیفک ایویڈنس کلیکٹ کیا ان کے خلاف، اور ان کا ڈی این اے پروفائلنگ بھی کیا، وکٹم فیملی کا بھی کیا۔ اور یہ لوگ بھی، ہم کو کچھ شک ہے کہ یہ لوگ کرناٹکا، آندھرا اور تلنگانہ میں بھی ایسے آفینس کیے گئے رہیں گے۔
یہ سوچیے کہ اس سمے ایک پولیس کمشنر دیش کے سامنے ایک جھوٹی کہانی بیان کر رہا تھا اور پورا دیش اس پر وشواس بھی کر رہا تھا۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں کاریکرم آج کی بات۔ اس کاریکرم میں ہم ہر گروار کو چرچا کرتے ہیں بھارت کے مہتوپورن وشیوں پر۔ کاریکرم آج کی بات،
جسٹس سرپورکر آیوگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جھوٹی کہانی بنائی گئی، فرضی کہانی بیان کی گئی۔ ان چاروں آروپیوں کے انکاؤنٹر میں مارے جانے پر تلنگانہ کے تتکالین قانون منتری اندر کرن ریڈی نے اسے بھگوان کا نیائے بتایا تھا۔ انہوں نے اس انکاؤنٹر کے لیے راجیہ پولیس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی اور کہا تھا کہ آروپیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے پولیس نے انہیں مڈ بھیڑ میں مار گرایا۔ بات کیول منتری تک ہی سیمت نہیں رہی، کھلاڑیوں سے لے کر بالی ووڈ کے ابھینیتا تک اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ پرسدھ ٹیکہ کار اور ٹی وی اینکر رویش کمار اس وشے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں،
بیڈمنٹن اسٹار سائنا نہوال کا ٹویٹ ہے، گریٹ ورک، #ہیشٹیگ حیدرآباد پولیس وی سلیوٹ۔ سائنا نہوال کے اس ٹویٹ کو 40,000 لائکس ملے۔ اس کے ایک مہینے کے بعد سائنا نہوال بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے۔ فلم ابھینیتا انوپم کھیر ٹویٹ کرتے ہیں کہ کانگریچولیشنز اینڈ #ہیشٹیگ جے ہو ٹو #ہیشٹیگ تلنگانہ پولیس فار شوٹنگ ڈاؤن دا 4 ریپسٹ ان این انکاؤنٹر۔ چلو، اب جتنے بھی لوگوں نے ایسا گھنونا اپرادھ کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان کے لیے خطرناک سے خطرناک سزا چاہی تھی۔ میرے ساتھ زور سے بولو #ہیشٹیگ جے ہو۔ یہ انوپم کھیر کے ٹویٹ ہیں۔ اس ٹویٹ کو 51,000 لائکس ملے تھے، 6,468 بار دوبارہ ری ٹویٹ کیا گیا اور 3,000 سے زیادہ کامنٹ آئے تھے۔ انوپم کھیر کے ٹویٹ پر مہیش رابری نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج کوئی ثبوت نہیں مانگے گا، یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب جو انکاؤنٹر کا ثبوت مانگے اسے بھی ایک گولی دے دینا چاہیے، #حیدرآباد پولیس۔
आपको बता दें कि हैदराबाद के वेटनरी डॉक्टर दिशा के साथ चार आरोपियों ने गैंग रेप किया था और बाद में जलाकर उनकी हत्या कर दी थी। इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में चारों आरोपियों के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आई थी। योग गुरु बाबा रामदेव का उस समय का बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि कैसे ऑन स्पॉट सेना और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
जो इस तरह के अपराधी होते हैं, कलंक होते हैं, जिनसे पूरा देश, धर्म, संस्कृति बदनाम होती है, उनके साथ और जो आतंकवादी उनके साथ तो ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को और सेना को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन घटनाओं में संदेह नजर आता है उन घटनाओं को हमें आगे कोर्ट में ले जाना चाहिए, उसके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें एविडेंस है उसके आधार पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका रास्ता अपनाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के इस आयोग ने 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की सिफारिश की। इसमें पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार का नाम नहीं है। पुलिस की बनी बनाई कहानी पर चुपचाप यकीन कर लेने वाले लोग बहुत मुश्किल से धरती पर अवतरित होते हैं। जिन चार लोगों का इनकाउंटर हुआ उनमें तीन नाबालिग थे। सिरपुरकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अभियुक्तों पर जानबूझकर गोली चलाई गई ताकि वो मर जाएं। इसके कोई सबूत नहीं है कि वो हथियार छीनकर भाग रहे थे और पुलिस पर हमले कर रहे थे। आयोग की रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि हैदराबाद का इनकाउंटर केवल इनकाउंटर के मामले में ही फर्जी नहीं था। भारत के प्रसिद्ध टीकाकार रविश कुमार हैदराबाद फर्जी एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के परिजनों का दुख बयान करते हुए कहते हैं कि
इन साधारण घरों के बच्चों को पुलिस उठाकर ले जाती है, एनकाउंटर कर देती है, गोदी मीडिया और ट्विटर के जरिए समाज का बड़ा हिस्सा खून का प्यासा हो जाता है और एनकाउंटर का जश्न मनाता है। क्या वह वैश्विक समाज, बदहवास नेता इनके घरों पर जाकर प्रायश्चित करेंगे? जस्टिस सिरपुरकर आयोग की रिपोर्ट में अभियुक्तों के परिवार वालों के बयान हैं। इनमें कुछ का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ही कोई वारंट या मेमो दिखाया गया। कुछ के माता पिता का कहना है कि उन्हें तो टीवी न्यूज से पता चला कि क्या हुआ है। मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन, चिंता कुंता, चन्ना केशवालू में से तीन लोग नाबालिग थे, फिर भी पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए बालिग बताकर इनकी तस्वीरें मीडिया में जारी की। आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि पुलिस ने जानबूझकर जानकारी छिपाई, जबकि पुलिस को भी शक था कि इनमें से दो नाबालिग थे। आयोग ने काफी विस्तार से बताया है कि कैसे पुलिस ने उनके स्कूल जाकर डेट ऑफ बर्थ पता करने की कोशिश की, लेकिन तब भी नाबालिग वाली जानकारी को दबा दिया गया।
कहां गए वो लोग जो हैदराबाद एनकाउंटर की जय जयकार कर रहे थे, जो एक तरह से समाज में निर्दोष की हत्या का वातावरण बना रहे थे? न जाने कितने बेकसूर अपराधी बनाकर जेल में डाले जा रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है और उन्हें फांसी हो रही है। ये सिलसिला कब रुकेगा? दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं सैयद मीसम और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, किसी भी देश की प्रतिभाशाली हस्तियां उस राष्ट्र की क्षमताओं और प्रतिभाओं को बयान करती हैं, साथ ही ऐसी हस्तियों के कारण राष्ट्र के लोगों का आत्मविश्वास और मनोबल दोगुना हो जाता है। जब एक ईरानी मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर चैंपियनशिप के मंच पर खड़ी होती है तो सभी उसका सम्मान करते हैं, और यह एक ऐसा क्षण होता है जब किसी भी राष्ट्र का सिर गौरव से ऊंचा उठ जाता है। प्रिय श्रोतागण, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसी ईरानी नायिका से आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने ईरानी राष्ट्र को अपने जोश और जज्बे से गौरवान्वित किया है। लेकिन उससे पहले हम इस संबंध में इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता द्वारा ऐसी प्रतिभाशाली हस्तियों और राष्ट्र के नायकों के बारे में कहे गए अनमोल शब्दों के बारे में बताएंगे। आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनेई खेलकूद को आत्मा के निर्माण का एक बेहतरीन माध्यम मानते हैं और एक ऐसा जरिया मानते हैं जो इंसान की शारीरिक और मानसिक सेवा करता है। यह स्वाभाविक है कि इस्लाम हर ऐसी गतिविधियों से सहमत है और उसे मूल्यवान मानता है कि जिससे इंसान की आत्मा का निर्माण हो।
जैसा कि हमने समाचार माध्यमों के जरिए सुना है कि ईरान की प्रसिद्ध तैराक इलहाम अस्सादात असगरी ने अपने नाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इस रिकॉर्ड बुक का आधिकारिक सर्टिफिकेट कोरोना महामारी के कारण कई महीनों की देरी के बाद ईरान पहुंचा कि जिसका अनावरण फ्री जोन की उच्च परिषद के कार्यकाल में किया गया। इससे पहले तेहरान की इस तैराक ने बुशहर में अपने नाम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। इलहाम अस्सादात असगरी ने 26 वर्ष की आयु में कैस्पियन सागर में 12 किलोमीटर के राउंड ट्रिप को 5 घंटे के भीतर खुले पानी में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। साथ ही उन्होंने हिजाब के साथ 5 किलोमीटर और 580 मीटर तक बंधे हाथों के साथ 3 घंटे तक तैरकर एक नई मिसाल पेश की थी।
इलहाम अस्सादात असगरी का जन्म जुलाई 1981 में हुआ था। उन्होंने 5 साल की उम्र से तैराकी करना शुरू किया था। 18 साल की आयु में उन्होंने लाइफगार्ड का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था। उनके अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपनी समस्याओं और टेंशनों को खुद से दूर करने के लिए स्विमिंग करना शुरू किया। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह तैराकी में आगे बढ़े, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2008 में स्विमिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया और देखते ही देखते असगरी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, जिसमें समुद्र में लंबी दूरी और कई किलोमीटर तक तैरने की रिकॉर्ड सहित विभिन्न समुद्री रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने में कामयाब रही। इलहाम अस्सादात असगरी के पास आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री है। वह लगभग 2 वर्षों तक किश द्वीप पर जारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात रही हैं।
तेहरान की 39 वर्षीय तैराक कई वर्षों तक विश्व रिकॉर्ड बुक में अपना तैराकी का रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहती थी और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने तुर्की और संयुक्त अरब इमारात की यात्रा की। असगरी ने वर्ष 2017 में पहली बार 4200 मीटर से अधिक की दूरी में बंधे हाथों से तैराकी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने बंधे हाथों के साथ 3500 मीटर की तैराकी में इटली के पाओलो कार्जरी के रिकॉर्ड को तोड़ डाला। इस बारे में इलहाम अस्सादात असगरी कहती हैं कि इस क्षेत्र में रिकॉर्ड एक इतालवी पुरुष व्यक्ति के नाम था जिसे पिछले 6 वर्षों से कोई नहीं तोड़ सका था। دنیا کے وبھن دیشوں کے تیراکوں نے اس ریکارڈ کو توڑنے کی کئی بار کوشش کی لیکن کوئی بھی پاولو کارزری کے ریکارڈ کو توڑ نہیں سکا۔ لیکن میں نے 3 گھنٹوں تک بندے ہاتھوں کے ساتھ بوشہر کے تٹ پر سوئمنگ کر کے ایک اور جہاں ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کیا، وہیں پاولو کارزری کے ریکارڈ کو توڑنے میں بھی سفلتا حاصل کی۔
दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण व्यायाम मानव स्वास्थ्य और कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीन ने मनुष्य की जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है, इसीलिए किसी भी काम को अंजाम देने में इंसान की शरीर की ऊर्जा कम खर्च होती है। ऐसी स्थिति में हर दिन व्यायाम करना अतीत से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस बीच देखा जा रहा है कि कई एथलीट इच्छा, अधिक दृढ़ता और प्रेरणा के साथ खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करते हैं। साथ ही ऐसे सभी एथलीट जो पूरी शिद्दत के साथ अभ्यास करते हैं, वह लगातार अच्छे नतीजे तक भी पहुंचते हैं। जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पाते हैं, वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहले के रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं और कभी कभी विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं।
ईरान का नाम रोशन करने वाली तेहरान की रहने वाली असगरी ने भी अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और भरपूर अभ्यास के बाद तैराकी के क्षेत्र में कई रिकॉर्डों को अपने नाम किया है। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है कि जब ये घोषणा की जाती है कि एक महिला तैराक बुशहर के खुले पानी में अपने हाथों को बांधकर और इस्लामी वेशभूषा में कुछ घंटों तक तैरकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाती है, तो ये बात ऐसे लोगों को जल्दी हजम नहीं होती और वो इस पर हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक महिला इस्लामी सिद्धांतों पर अमल करते हुए हिजाब के साथ बंधे हाथों से इतने लंबे समय तक समुद्र में तैराकी कर सकती है। असगरी के लिए जो चीज़ सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी वो था उनका हिजाब, जिसके कारण उन्हें कई सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने तैराकी में इस्लामी हिजाब के होने पर बल देते हुए कहा कि मेरी मुख्य इच्छा ये थी कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती थी कि सिर ढकना और हिजाब पहनना कामयाबी के शिखर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। असगरी कहती हैं कि हिजाब के साथ भी हम ऐसी तैराकी कर सकते हैं कि जिससे बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएं और यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा सकें। इलहाम असादात असगरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों को ये मनवाने में कामयाब रही थी कि हिजाब में भी तैराकी की जा सकती है और इससे किसी भी तरह की तैराकी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता है।
व्यायाम शरीर और आत्मा को मजबूत करने और मनुष्य की वृद्धि और उत्कृष्टता के लिए एक रचनात्मक शैक्षिक प्रक्रिया है। धार्मिक शिक्षाएं भी आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ साथ शारीरिक व्यायाम पर भी बल देती हैं। इस्लाम जहां युवाओं के खुशहाल जीवन की बात करता है, वहीं शरीर और आत्मा की मजबूती पर बहुत ध्यान देने की बात करता है। इस बीच इस्लाम में ऐसे बहुत सारे कथन मौजूद हैं कि जिसमें तैराकी को इस्लाम धर्म के सबसे प्यारे व्यायामों में से एक कहा गया है। इसी तरह तैराकी के सीखने के बारे में भी इस्लाम धर्म में काफी बल दिया गया है। एक कथन में आया है कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तैराकी और निशानेबाजी सिखाएं। इल्हाम असगरी ईरानी महिलाओं में से एक ऐसी महिला हैं कि जिन्होंने अपने प्रयासों की बदौलत अपने सपनों को साकार किया और दुनिया में एक सफल महिला के रूप में अपना और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करने में कामयाब रही हैं। एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए कई वर्षों तक ईरानी जल में तैरते हुए व अंततः विपक्ष के प्रचार के बावजूद खुद को दुनिया के सामने साबित करने वाली पहली ईरानी महिला तैराक बनने में सक्षम थी। वह एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कई वर्षों से ईरानी जल क्षेत्र में तैराकी कर रही थी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो गई।
असगरी का मानना है कि उनके द्वारा बनाए गए नए विश्व रिकॉर्ड के बाद बहुत सारे रास्ते उनके लिए खुल गए हैं, लेकिन वो इन रास्तों में उन्हीं रास्तों को चुनेंगी जो इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए हिजाब के साथ उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। असगरी कहती हैं कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए तैराकी को जारी रखूंगी और आने वाले समय में नए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करूंगी ताकि अपने देश को गौरवान्वित कर सकूं। असगरी इस बारे में कहती हैं कि मैं बचपन से तैराकी कर रही हूं और मैंने इस खेल में मौजूद सभी तरह की बाधाओं को तोड़ दिया है और आज मैं पहली ईरानी महिला तैराक के नाम से पहचानी जाने लगी हूं। तैराकी में पहले मैं अकेले महिला तैराक थी, लेकिन अब ये रास्ता अन्य महिलाओं के लिए खुल गया है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम ईरान से अन्य महिला तैराकों की उपस्थिति देखेंगे जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूर रोशन करेंगी। वो कहती हैं कि वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल खेल के लिए नहीं है, इसलिए ईरानी महिलाएं दूसरे क्षेत्र में भी अपने नामों को इस रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा सकती हैं। असगरी कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से इस तरह का रिकॉर्ड बनाना मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना था। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता इसी पर केंद्रित कर दी, बहुत कोशिशें की और अंततः मैं सफल हो गई। मैं देश की सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करें और बिल्कुल ना उम्मीद ना हो।
तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय अब यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। तो श्रोताओ, इसी कार्यक्रम के साथ हमारी ये सभा भी यहीं पर संपन्न होती है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और दूसरे सभी साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि। Thank you.